بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتا، آج ہم اپنے کارکرم کا آرمبھ سورہ بقرہ کی آیت کرمانک 207 سے 210 تک کی تلاوت اور انواد سے کر رہے ہیں۔ تلاوت کا شرح پراپت کر رہے ہیں پرخیات قاری پور زرگری۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من یشری نفسا ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔
اللہ کے نام سے جو اتیانت کرپاشیل اور دیاوان ہے، اور ایمان والوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو ایشور کی پرسنتا پراپت کرنے کے لیے اپنی جان بھی دے دیتا ہے، اور ایشور اپنے بندوں کے پرتی اتیانت دیاوان ہے۔ ہے ایمان والو، تم سب کے سب شانتی میں پرویش کرو اور ایشور کے پرتی سمرپت رہو، اور شیطان کے پد چنوں کا انوسرن نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا شترو ہے۔ फिर यदि तुम इन सब स्पष्ट निशानियों और चमत्कारों के आने के बाद भी फिसल कर पद भ्रष्ट हो गए तो जान लो कि ईश्वर प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। क्या ये पदभ्रष्ट इतने सारे स्पष्ट तर्कों के बावजूद इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ईश्वर और फरिश्ते बादलों की छाया में प्रकट होकर इनके सामने आएं और इनके समक्ष नए तर्क रखें ताकि ये ईमान लाएं, जबकि लोगों के मार्गदर्शन के बारे में ईश्वरीय आदेश पूरा हो चुका है और सभी मामले ईश्वर ही की ओर लौटाए जाएंगे।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार है, फरवरी की 5, जमादी सानी की 22 और बहमन माह की 17 तारीख। एक घंटे तक चलने वाली सभा का आरंभ विगत की ही भांति हम विश्व समाचारों से करेंगे। विश्व समाचारों के बाद आप राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम सुनेंगे। दैनिक चर्चा के उपरांत स्वतंत्रता प्रभात के संबंध में विशेष कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे और सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा पत्र संसार। तो श्रोताओं, यदि हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा कुछ ही क्षणों में समाचार पेश किए जाएंगे। ये तेहरान है, अब आप विश्व समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले आज के प्रमुख समाचारों का सारांश। आर्च बिशप मानरेसाई का कहना है कि स्वर्गीय इमाम खुमैनी के विचार धर्मों के बीच एकता का कारण बने। चाबहार बंदरगाह के लिए भारत ने 1 अरब रुपए का बजट विशेष किया है। भारतीय कृषि मंत्री का कहना है कि कृषि कानूनों को लेकर किसानों के बीच भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। हशदुशाबी ने हमला करके इराक में दाइश के कई आतंकियों को मार गिराया। और अब आप विस्तार से कायम रिजवी से विश्व समाचार सुनिए। आर्च बिशप मारने राइस ने कहा है कि स्वर्गीय इमाम खुमैनी के विचार धर्मों के बीच एकता का कारण बने हैं। ईरान के वरिष्ठ आर्च बिशप ने बताया कि इस्लामी क्रांति की शिक्षाओं में ईश्वरीय धर्मों के बीच मतभेदों की निंदा की गई है। उन्होंने कहा कि कुछ वर्ष पहले ईरान की संसद में कानून बनाया गया था जिसमें यह कहा गया था कि दूसरे धर्मों का अपमान अनुचित है। इस ईसाई धर्मगुरु ने कहा कि इस्लामी गणतंत्र ईरान में अल्पसंख्यकों के लिए आज़ादी को सुनिश्चित किया गया है। आर्च बिशप ने ये बातें गुरुवार की रात स्वतंत्रता प्रभात के अवसर पर एक ईसाई शहीद के बारे में आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर कहीं। उन्होंने बताया कि इस समय ईरान के उरूमिया शहर में 80 गिरजाघर मौजूद हैं और ये नगर विभिन्न धर्म के मानने वालों के नगर के रूप में जाना जाता है। ईरान के इस ईसाई धर्मगुरु का कहना था कि देश में अल्पसंख्यकों के लिए जो नियम निर्धारित किए गए हैं वे सरकारों के बदलने से नहीं बदलते क्योंकि ये संविधान का भाग हैं। भारत सरकार ने ईरान के साथ होने वाले समझौते और द्विपक्षीय सहयोग में वृद्धि के आधार पर चाबहार बंदरगाह के विस्तार के लिए 1 अरब रुपए का बजट विशेष किया है। इरना की रिपोर्ट के अनुसार भारत की वित्त मंत्री ने चाबहार में अपने देश के पूंजी निवेश पर बल देते हुए कहा है कि भारत सरकार ने वर्ष 2021-22 के बजट में ईरान की चाबहार बंदरगाह के विस्तार के लिए 1 अरब रुपए का बजट विशेष किया है। भारतीय वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार चाबहार जाहिदान रेल लाइन में विस्तार के लिए भी ईरान के साथ सहयोग जारी रखेगी। भारत सरकार ने वर्ष 2019-20 के बजट में चाबहार बंदरगाह के विस्तार के लिए 45 करोड़ रुपए विशेष किए थे। भारत में कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन के बीच संसद का बजट सत्र जारी है। इस दौरान बजट सत्र के अंदर काफी हंगामा देखने को मिला। गुरुवार को लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ, जिसकी वजह से कई बार सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। सदन को संबोधित करते हुए भारत के केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि किसान की आमदनी दोगुनी हो, इसके लिए मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान योजना के माध्यम से 6,000 रुपये का योगदान दिया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने दावा किया कि पूरे पंजाब राज्य में गलतफहमी फैलाई जा रही है, किसानों को गलतफहमी का शिकार बनाया गया है। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानूनों में कुछ भी किसानों के खिलाफ नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ऐसा कुछ नहीं है कि किसानों से उनकी जमीन छीन ली जाए। दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर विवादित कृषि कानूनों के विरोध में 2 महीने से अधिक समय से चल रहे किसानों के आंदोलन का समर्थन करने वाली पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने FIR दर्ज की है। थनबर्ग के खिलाफ IPC की धारा 153A अर्थात धर्म और जाति के आधार पर 2 समुदायों के बीच नफरत को बढ़ावा देना और 120B अर्थात आपराधिक षड्यंत्र रचने के तहत FIR दर्ज की गई है। ग्रेटा ने किसान आंदोलन के समर्थन में बीते 3 फरवरी को ट्वीट किया था। दिल्ली के साइबर सेल द्वारा केस दर्ज किए जाने के तुरंत बाद ग्रेटा ने एक और ट्वीट करके कहा है कि मैं अभी भी किसानों के ही साथ हूं और उनके शांतिपूर्ण आंदोलन का समर्थन करती हूं। घृणा, धमकी या मानवाधिकारों का उल्लंघन इसे कभी भी बदल नहीं पाएगा। इराक के स्वयं सेवी बल हश्द शाबी की मिसाइल यूनिट ने देश के पूर्वी प्रांत दियाला के नफ्त खाने क्षेत्र में दाइश के खुफिया ठिकाने पर भीषण हमला किया। इस हमले में कई आतंकवादियों के मारे जाने और घायल होने की भी सूचना है। फार्स न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार इराकी स्वयं सेवी बल हश्द शाबी की मिसाइल यूनिट ने दियाला प्रांत के नफ्त खाने में आतंकवादी गुट दाइश के खुफिया ठिकानों पर जबरदस्त मिसाइल बरसाए। इराकी स्वयंसेवी बलों ने इसी तरह ईरान से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में भी दाइश के खुफिया ठिकानों को निशाना बनाया है। तकफीरी आतंकवादी गुट दाइश ने इराकी वायुसेना के कमांडर के घर के बाहर एक पैकेट बम रखा, जिसे सेना के जवानों ने निष्क्रिय कर दिया। फार्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार इराक के एक सुरक्षा सूत्र ने बगदाद में वायुसेना के कमांडर की टारगेट किलिंग की कोशिश को विफल बनाए जाने की सूचना दी है। बगदाद पुलिस के अधिकारी ने अनातोली न्यूज एजेंसी को बताया कि कुछ अज्ञात लोगों ने, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वे दाइश के तत्व हो सकते हैं, वायुसेना के कमांडर के घर के बाहर पैकेट बम रख दिया था। उनका कहना था कि पश्चिमी बगदाद के अल मंसूर क्षेत्र में अल अरबी मोहल्ले में यह कार्रवाई की गई और आतंकवादियों का लक्ष्य मालिकी की हत्या करना था। उनका कहना था कि बम डिस्पोजल स्क्वाड ने किसी नुकसान के बिना ही बम को निष्क्रिय बना दिया। यमन की नेशनल सॉल्वेशन सरकार के प्रवक्ता और वरिष्ठ वार्ताकार का ये कहना है कि सऊदी अरब के हमलों पर जवाबी कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा। अंसारुल्ला आंदोलन के प्रवक्ता मोहम्मद अब्दुस्सलाम ने कहा है कि यमन में तभी शांति स्थापित हो सकती है जब इस देश पर हमले बंद हों और इस देश का घेराव खत्म किया जाए। उन्होंने शुक्रवार की सुबह ट्वीट किया कि यमनी मिसाइल देश की रक्षा के लिए हैं और केवल हमले और घेराव बंद होने से ही इन मिसाइलों के हमले भी बंद होंगे। ऐसा लगता है कि अंसारुल्ला के प्रवक्ता का यह ट्वीट यमन युद्ध के बारे में अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के नए दावे पर आधारित है। अमरीकी राष्ट्रपति ने गुरुवार को एक भाषण में दावा किया था कि यमन युद्ध को समाप्त कराने का वे इरादा रखते हैं। उन्होंने साथ ही सऊदी अरब की अपनी संप्रभुता की रक्षा करने में उसकी मदद करने का भी वादा किया और ये भी दावा किया कि सऊदी अरब को ईरान समर्थित लड़ाकों के हमलों का सामना है। راج سنگھ نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ آتنکوادی سنگٹھن القاعدہ کا یمنی سرغنہ پکڑا گیا ہے. اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کا سہیوگی مارا جا چکا ہے. اے ایف پی کے انوسار یمن میں القاعدہ کا سرغنہ خالد بات رفی المہرا پرانت کے الغیزہ شہر میں ایک بڑے آپریشن کے دوران اکتوبر کے مہینے میں گرفتار کیا گیا تھا. اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اکتوبر میں مہرا پرانت میں ہونے والے آپریشن کے دوران اس کا سہیوگی سعد مارا گیا. سنیوک راشٹر سنگھ کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ابو مقداد کے نام سے مشہور بات رفی اسی سمے سے جیل میں ہے. سی این این نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ یہ پہلی بار ہے کہ جب کسی سرکاری سنستھا کی اور سے بات رفی کی گرفتاری کی سوچنا دی گئی ہے. اسرائیلی سینکوں نے ویسٹ بینک کے رام اللہ شیتر میں ایک فلسطینی یوا کو گولی مار کر شہید کر دیا. اسرائیلی سینکوں کی فائرنگ میں ایک فلسطینی یوا کے مارے جانے کی سوچنا ملی ہے. عرب 48 ویب سائٹ نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ یہ فلسطینی جوان سشست نہیں تھا. اسے ویسٹ بینک کے افرائم اسرائیلی بستی کے پاس گولی مار کر شہید کر دیا گیا. اسرائیلی سینا نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ فلسطینی جوان اسرائیلی بستی کے گھر میں گھسنا چاہتا تھا، کنتو اسرائیلی بستی کے نواسی اس سے الجھ گئے اور اس سے جھگڑا کرنے لگے. اسرائیلیوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ جھڑپوں کو بڑھتا دیکھ کر بستی کی سرکشا پر تعینات گارڈ نے اس پر فائرنگ کر دی، جس سے وہ گھٹنا استھل پر ہی مارا گیا. ایک زائونی وشیشجھ کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کے میزائل آکرمن اسرائیل کی پرتیرودھک کھمتا کو سماپت کر سکتے ہیں. یواف لیمور نے شکروار کو اسرائیلی سماچار پتر میں اپنا ایک لیکھ لکھ کر اسرائیل کی پرتیرودھک کھمتا پر پرشن چنہ لگایا ہے. ان کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کی اور سے اسرائیل کے ڈرون پر میزائل کے حملے نے وہاں پر سمسیا کھڑی کر دی ہے. میانمار میں سینک ودروہ کے بعد آنگ سانگ سوچی کے 80 ورشی ورشٹھ صلاحکار کو سینا نے گرفتار کر لیا ہے. فرانس 24 کے انوسار میانمار میں راشٹریہ پرجاتنتر ایکتا پارٹی کی نیتا آنگ سانگ سوچی کے 80 ورشی صلاحکار ون منٹ کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اس ورشٹھ صلاحکار پر لوگوں کو سینا کے ورودھ اکسانے کا آروپ بھی ہے. سینا کا کہنا ہے کہ وہ لگاتار لوگوں سے سینا کے ورودھ کاروائی کا آہوان کر رہے تھے. اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے وشو سماچار سماپت ہوئے.
یہ تہران ہے اسلامی گنتنتر ایران کی آواز.
راجنیتک چرچا.
श्रोताओं, राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए. श्रोताओं, स्वर्गीय इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के नेतृत्व में ईरान की इस्लामी क्रांति वर्ष 1979 में सफल हुई. तब से लेकर आज तक ईरान की इस्लामी व्यवस्था के दुश्मन उसके खिलाफ नित नए षड्यंत्र रचते रहते हैं, परंतु अंत में उन्हें मुंह की खानी पड़ती है. ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ ورچسوادی شکتیاں ایران کی اسلامی ویوستھا کے خلاف جو شڈینتر رچتی ہیں اور جو بادھائیں اتپن کرتی ہیں، اس کی وجہ سے ایران کو کچھ سمسیاؤں کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے، پرنتو انت میں ایران کو ہی سفلتا मिलती है।
ईरानियन रेवोल्यूशन वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को चेतावनी देते हुए कहा है कि रूस के साथ नरमी से पेश आने का समय बीत चुका है और मैं ट्रंप नहीं हूँ। साथ ही उन्होंने चीन को भी आड़े हाथों लेते हुए उसे अमेरिका का आर्थिक दुश्मन बताया है और बीजिंग को मानवाधिकारों के हनन का जिम्मेदार बताया और कहा कि वो चीन के प्रति कड़ी प्रतिक्रिया दिखाएंगे। भारत के कृषि मंत्री ने कहा है कि किसान आंदोलन के साथ उन्होंने गंभीरता से काम किया है और किसानों के साथ उन्होंने 12 बार वार्ताएं की हैं और उन पर बल दिया है कि जो कानून बनाए गए हैं वे बताएं कि इसमें क्या कमी है। ये थे हमारी आज की चर्चा के विषय। श्रोताओं, स्वर्गीय इमाम खमेनी रहमतुल्लाह अलैह के नेतृत्व में ईरान की इस्लामी क्रांति वर्ष 1979 में सफल हुई। तब से लेकर आज तक ईरान की इस्लामी व्यवस्था के दुश्मन उसके खिलाफ नित नए षड्यंत्र रचते रहते हैं, परंतु अंत में उन्हें मुंह की खानी पड़ती है और अंत में सफलता ईरान को ही मिलती है और उसके दुश्मनों को पराजय और अपमान का मुंह देखना पड़ता है। इस संबंध में कुछ बुद्धिजीवियों और विचारकों की बातों और उनके दृष्टिकोणों को पेश करें साथी अख्तर अब्बास।
ईरान की इस्लामिक क्रांति शायद हालिया 4 दशकों की सबसे बड़ी घटना थी। इस अवधि में ईरान पर इराक द्वारा 8 वर्षीय युद्ध थोप दिया गया। इस अवधि में ईरान अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने में सफल रहा और देश का संचालन कर सका। ईरान केवल इराक का मुकाबला नहीं कर रहा था बल्कि क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शक्तियां व देश सद्दाम का समर्थन कर रहे थे, जिसकी वजह से ईरान को विभिन्न कठिनाइयों का सामना था। उस समय की दो बड़ी शक्तियों के मध्य शीत युद्ध और ईरान के पड़ोस में पूर्व सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य अफगानिस्तान में होने वाले युद्ध की वजह से दोबारा ईरान को परोक्ष रूप से युद्ध जैसी स्थिति व कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस युद्ध के संबंध में ईरान ने जो नीति व दृष्टिकोण अपनाया था वह भी सफल रहा। 11 सितंबर की घटना से जो अमरीका में घटी, क्षेत्र में दोबारा युद्ध आरंभ हो गया और विश्व की वर्चस्ववादी शक्तियों ने क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को और अधिक कर दिया और ईरान ने अच्छी नीति अपनाकर इस दौर को भी पार कर लिया। क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए उसके बाद, जैसे इराक और सीरिया को दाइश जैसे तकफीरी व आतंकवादी गुटों का सामना हुआ, ईरान ने न केवल इराक और सीरिया के लोगों की मदद की बल्कि उसने इन आतंकवादी संगठनों का अंत भी कर दिया और क्षेत्र में ईरान का प्रभाव अधिक हो गया और वो अपने हितों को सुरक्षित करने में सफल रहा। इन सबके साथ ही ईरान ने अपनी घरेलू समस्याओं विशेषकर विदेश नीति का अच्छी तरह से संचालन किया और इस समय वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक प्रभावी देश के रूप में जाना जाता है और ईरान का क्षेत्रीय प्रभाव पूरी दुनिया के सामने मौजूद है। वर्ष 1979 में ईरान की इस्लामी क्रांति की सफलता वास्तव में अमरीकी साम्राज्यवाद के मुकाबले में मुसलमान जनता के प्रतिरोध का प्रतीक थी, क्योंकि इस क्रांति ने ईरानियों की एकता व समरसता से किए जाने वाले प्रतिरोध के बदले में इज्जत व प्रतिष्ठा को उपहार में दिया। जिन राष्ट्रों को अमेरिका और इसराइल एक समय में हथकंडे के रूप में इस्तेमाल करते थे, वही राष्ट्र ईरान की इस्लामी क्रांति से प्रेरणा लेकर दुनिया की जोर जबरदस्ती करने वाली शक्तियों के मुकाबले में अदम्य साहस के साथ डट गया। साहस व बहादुरी के साथ प्रतिरोध वो चीज है जिसे स्वर्गीय इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने क्षेत्रीय लोगों व जनता को उपहार में दिया है। ईरान ने साहस व बहादुरी के साथ आतंकवादी गुटों विशेषकर दाइश का मुकाबला किया और उनका सफाया कर दिया। इन आतंकवादी गुटों को साम्राज्यवादी शक्तियों ने इस्लामी जगत में फूट डालने के लक्ष्य से बनाया था। ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी के नेतृत्व में इराक और सीरिया में शांति स्थापित करने के लिए आतंकवादी गुटों का मुकाबला किया इस प्रकार से कि उसने इस आतंकवादी गुटों के समर्थकों को पराजय का कटु स्वाद चखाया और क्षेत्रीय देशों के बागडोर को अपने हाथ में लेने के उनके सपने को चकनाचूर कर दिया। स्वर्गीय इमाम खुमैनी ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को उनकी पहचान दिलाई।
ایران اسلام دیور میں دینل دین
ایران کی اسلامی کرانتی کا نام سننے کے بعد جو چیز سب سے پہلے میرے من میں آتی ہے اور اس چیز کو میں نے لیکھوں میں بھی پڑھا ہے وہ سورگی امام خمینی کی باتیں ہیں جس میں وہ لوگوں کو سمبودھت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان سپاہیوں اور سرکشا بلوں کو پھول بھیٹ کیجیے جنہوں نے آپ کی اور بندوق تان رکھی ہے. ایران کی اسلامی کرانتی اس وشیشتا کے ساتھ سفل ہوئی اور اس سمے وہ وشو کی ورچسوادی شکتیوں کے مقابلے میں سوتنترتا سوادھینتا اور پرتیرودھ کی پرتیک بنی ہوئی ہے.
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے. اور آپ سن رہے ہیں کاریکرم راجنیتک چرچا. سماچاروں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناؤں کی تہ تک پہنچنے اور وبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش. کاریکرم راجنیتک چرچا.
امریکی راشٹرپتی جو بائیڈن نے روس کو چیتاونی دیتے ہوئے کہا ہے کہ روس کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کا سمے بیت چکا ہے اور میں ٹرمپ نہیں ہوں. ساتھ ہی انہوں نے چین کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے اسے امریکہ کا آرتھک دشمن بتایا ہے. جانکار حلقوں کا ماننا ہے کہ ٹرمپ اور بائیڈن میں انتر کیول اتنا ہے کہ وہ انتراشٹری سمودائے کا سمرتھن بھی پراپت کرنا چاہتے ہیں. کامران نجف زادے کی رپورٹ پیش کریں ساتھ ہی رویش زیدی.
جو بائیڈن جب ودیش منترالے کی عمارت میں واشنگٹن کی کھلی ودیش نیتوں کو بیان کرنا چاہتے تھے تو سب سے پہلے انہوں نے پوتین کی بات کی اور کہا کہ میں ٹرمپ نہیں ہوں اور روس کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کا سمے بیت گیا ہے. وہ وشیش کر روس کے سائبر حملے اور امریکی چناؤ میں ماسکو کے ہستکشیپ کے آروپوں کی شکایت کر رہے تھے. بائیڈن نے اس کے بعد چین کو آڑے ہاتھوں لیا. بائیڈن نے چینیوں کو امریکہ کا آرتھک دشمن بتایا اور پرتیکش حملوں میں بیجنگ کو مانوادھیکاروں کے ہنن کا ذمہ دار بتایا اور چیتاونی دی کہ وہ چین کے پرتی کڑی پرتیکریا دکھائیں گے. ٹرمپ اور بائیڈن میں انتر یہ ہے کہ بائیڈن انتراشٹری سمرتھن بھی چاہتے ہیں. اب جبکہ اوباما کے سمرتھن سے یمن کے یدھ کو آرمبھ ہوئے 6 سال کا سمے بیت رہا ہے جس میں لاکھوں لوگ ہتاہت اور گھائل ہوئے ہیں. بائیڈن نے اس یدھ کے بند کیے جانے کا آہوان کیا اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ وہ ہتھیاروں کی بکری سہیت سعودی عرب کا سمرتھن بند کریں گے. کنتو ترنت انہوں نے ایسی بات کہہ دی کہ جس کا سعودی عرب نے بڑی خوشی سے سواگت کیا. بائیڈن نے کہا کہ سعودی عرب ان میزائلوں اور ڈرون ویمانوں کے حملوں کا سامنا کر رہا ہے جنہیں ایران کا سمرتھن پراپت ہے. البتہ ہم یعنی امریکہ سعودی عرب کی سمپربھوتا کی رکشا کے پرتی کٹیبدھ ہے. پرمانو سمجھوتے اور اس سمجھوتے میں امریکہ دوارا اپنے وچنوں کے پالن کی آوشکتا کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں کہا. ایران کے بارے میں بھی کوئی بات نہیں کی. نیو یارک سے آئی آر آئی بی کے لیے کامران نجف زادی کی رپورٹ.
بھارت کے کرشی منتری نے کہا ہے کہ کسان آندولن کے ساتھ انہوں نے گمبھیرتا سے کام کیا ہے اور کسانوں کے ساتھ انہوں نے 12 بار وارتائیں کی ہیں. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہم سمان کے ساتھ اس سمسیا کا سمادھان چاہتے ہیں. پوری جانکاری کے ساتھ شنگا سے سپتے محمد حسن.
بھارت کے کرشی منتری تومر نے آج سانسد کو بتایا کہ انہوں نے کسان آندولن کے حوالے سے گمبھیرتا کے ساتھ کام کیا اور کسانوں کے ساتھ ان کی 12 وارتائیں ہوئی اور انہوں نے انہیں سمان کے ساتھ بلایا اور ان پر یہ بل دیا کہ وہ یہ بتائیں کہ جو بھی قانون لائے گئے ہیں ان میں کمی کہاں پہ ہے. انہوں نے سانسد کو بتایا کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ایک راجیہ میں کسان آندولن پہ ہے ہم ان کا بھی سمان کرتے ہیں, پرنتو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم سمان کے ساتھ اس سمسیا کا سمادھان چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس کی آڑ میں راجنیتی نہیں ہونی چاہیے. اس اوسر پر انہوں نے کہا
بھارت سرکار نریندر مودی جی کا نیترتو پوری طرح کسانوں کے پرتی پرتیبدھ ہے, کسانوں کے پرتی سمرپت ہے. किसान आंदोलन के लिए हम लोगों ने लगातार उनको सम्मान देने की कोशिश की है, 12 बार ससम्मान बुलाकर बातचीत की है, एक शब्द भी हमने उनके बारे में इधर उधर नहीं बोला, संवेदनशीलता के साथ विचार किया है। लेकिन हमने ये जरूर कहा है कि आप प्रावधान में कहां गलती है, विनम्रता पूर्वक हमारा ध्यान आकर्षित करिए।
इस बीच श्रीनगर में आज भी बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों ने अपने मुतालबात को लेकर जोरदार प्रदर्शन किए। प्रदर्शनकारी महिला कर्मचारियों ने कहा कि उनके 2.5 साल की तनख्वाह अभी तक नहीं दी गई है और वो सरकार से मुतालबा करते हैं कि एक तो उनकी तनख्वाह वागुजार की जाए, दूसरी उन्हें परमानेंट जॉब दी जाए। उन्होंने कहा कि अब वर्षावर्ष से वो इन डिपार्टमेंटों में काम कर रहे हैं परंतु उनकी सुनवाई नहीं हो रही है।
हम चाहते हैं कि हमारी 2.5 साल की तनख्वाह वागुजार हो जाए और खासकर हमारे पोस्ट सैंक्शन किए जाए और हमें बार बार ये प्रॉब्लम न हो कि हमारी बजट हर साल बंद हो जाती है।
सिप्ती मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोतो, हमारी सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा पत्र संसार, पर उससे पहले आप स्वतंत्रता प्रभात के अवसर पर सुनिए हमारा विशेष कार्यक्रम।
स्वतंत्रता प्रभात।
दोस्तों, स्वतंत्रता प्रभात की एक और कड़ी के साथ आपकी सेवा में हाजिर है स्वाति और मोहम्मद अली पुम्मी का सलाम स्वीकार करें।
इस्लामी सभ्यता ने पूरे इतिहास में ऐसे ऐसे ज्ञानी पैदा किए हैं जिनकी ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में यादगार सेवाएं हैं। वास्तव में इस्लामी सभ्यता का विकास इन्हीं विद्वानों की सेवाओं पर निर्भर रहा है। ये लोग अपने हितों के आधार पर काम नहीं करते थे। उनकी सेवा भावना ऐसी थी कि जिससे सेवा के बाद उसमें नई ताजगी पैदा हो जाती थी। ये सब कुछ इस्लामी सभ्यता की देन थी और यह विशेषता ईरान की इस्लामी क्रांति में नजर आती है। ईरान की इस्लामी क्रांति की एक बड़ी विशेषता यह है कि उसने धार्मिक क्रांति के रूप में बड़े बड़े नायकों और बुद्धिजीवियों को जन्म दिया है और जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है उनकी संख्या में वृद्धि होती जा रही है।
ईरान में इस्लामी क्रांति की सफलता के तत्काल बाद से ही क्रांति के जिम्मेदारों और विशेषकर क्रांति के संस्थापक इमाम खुमैनी ने विकास पर बहुत अधिक ध्यान दिया, क्योंकि ईरानी राष्ट्र की एक बेहद पुरानी मांग विकास रही है और विकास ज्ञान व विज्ञान पर ध्यान देने और आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता के बिना संभव नहीं है। इस तरह से ज्ञान विज्ञान में विकास को ईरान की इस्लामी क्रांति के मूल उद्देश्यों में रखा गया और इस विचारधारा की वजह से ईरान में इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद बड़ी तेजी के साथ विकास हुआ और ईरान ने सैनिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और सामाजिक क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों में तेज गति से उन्नति की। इस्लामी क्रांति के संस्थापक इमाम खुमैनी के बाद इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनेई ने बुद्धिजीवियों को समाज का गुलदस्ता कहा और उन्हें बौद्धिक पूंजी का नाम दिया। जाहिर सी बात है कि बौद्धिक पूंजी की तुलना भौतिक पूंजी से किसी भी दशा में नहीं की जा सकती। इस आधार पर बौद्धिक पूंजी का महत्व बहुत अधिक होता है, भले ही ज्ञान विज्ञान सांसारिक जीवन को बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध होता हो।
क्रांति की सफलता को एक साल भी पूरा नहीं हुआ था कि इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन ने 3 दिन में ईरान को फतह कर लेने के नारे के साथ धावा बोल दिया और इस तरह से इस तानाशाह ने ईरान पर 8 वर्षों तक चलने वाला युद्ध थोप दिया। इस युद्ध में ईरानी युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस युद्ध में धार्मिक स्कूलों और यूनिवर्सिटियों से जिस तरह से छात्र इमाम खुमैनी के बुलावे पर युद्ध में शामिल होने के लिए गए, वह अपने आप में ईरान के इतिहास में अभूतपूर्व है। इन लोगों ने थोपे गए युद्ध के कठिन दिनों में धर्म पर आस्था और विज्ञान को एक दूसरे से जोड़ दिया, ताकि देश सभी प्रतिबंधों और अभावों के साथ पूर्व व पश्चिम की सहायता से आगे बढ़ने वाले सद्दाम की सेना का मुकाबला कर सकें।
यूनिवर्सिटियों के मेधावी छात्रों ने युद्ध के दौरान ही देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश निर्माण का जिहाद शुरू कर दिया था। युद्ध खत्म होने के बाद भी क्रांति के सभी संवेदनशील दिनों और चरणों में ईरान के इन युवाओं ने वरिष्ठ नेतृत्व पर भरोसे और उनमें वरिष्ठ नेता के विश्वास के सहारे देश को विकास की राह पर तेजी से आगे ले जाते रहे। इन छात्रों ने देश को केवल वैज्ञानिक क्षेत्र में ही आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि सांस्कृतिक व सामाजिक क्षेत्रों में भी इन लोगों ने ईरान को विकास के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ा दिया।
बुद्धिजीवी हर समाज का इतिहास लिखने वाले होते हैं और उनमें समाज में क्रांति लाने की क्षमता व शक्ति होती है। ये क्रांति राजनीतिक हो या व्यवस्था की हो या फिर ज्ञान विज्ञान, तकनीक, संस्कृति व कला के क्षेत्र में हो, उनकी भूमिका का किसी भी क्षेत्र में इनकार संभव नहीं है। ईरान में इस्लामी क्रांति की सफलता से पहले तक बुद्धिजीवियों के लिए कोई विशेष संस्था नहीं थी।
ईरान में इस्लामी क्रांति की सफलता और विशेषकर वरिष्ठ नेता के नेतृत्व के हालिया दो दशकों के दौरान इस्लामी गणतंत्र ईरान ने बुद्धिजीवियों और मेधावी छात्रों और असाधारण योग्यता रखने वाले छात्रों की पहचान और उनका संरक्षण करने के लिए कई संस्थाएं बनाई और इन्हीं संस्थाओं ने देश के विकास और उसे विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस उद्देश्य के अंतर्गत सन 2006 में ईरान्स नेशनल एलिट फाउंडेशन बनाया गया, जिसका उद्देश्य असाधारण योग्यता रखने वाले छात्रों और वैज्ञानिकों के सहयोग से देश के विकास की रफ्तार को तेज बनाना है। इस समय 12,000 से ज्यादा मेधावी छात्र और बुद्धिजीवी इस फाउंडेशन से लाभ उठा रहे हैं।
इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह अल उज़्मा सैयद अली खामेनेई ने असाधारण योग्यता रखने वाले बुद्धिजीवियों की एक भूमिका ज्ञान विज्ञान की चार दीवारी को तोड़ना भी बताया है। वरिष्ठ नेता आगे कहते हैं कि आज ज्ञान विज्ञान मानव स्तर पर देश के स्तर पर नहीं, एक निर्धारित सीमा के भीतर है। हम इसमें अपनी भूमिका निभा सकते हैं। हमें नई सीमाओं की खोज और ज्ञान में विस्तार करना चाहिए। ये जो मैं बुद्धिजीवियों को विशेष रूप से सम्मान देता हूँ, उसकी वजह यह विचार है। हमारे असाधारण योग्यता रखने वाले बुद्धिजीवी जीवन शैली में, योजनाओं में और देश के विकास में, बल्कि मानवता के विकास में प्रभावशाली हो सकते हैं।
वरिष्ठ नेता साल भर में 10 से ज्यादा बार बुद्धिजीवियों से भेंट करते हैं और साप्ताहिक बैठकों में भी वो शामिल रहते हैं। वरिष्ठ नेता का मानना है कि असाधारण योग्यता वाले बुद्धिजीवियों की पहचान, उनका संरक्षण और उन्हें एक संगठन में शामिल करना देश में तेज विकास का रास्ता साफ कर सकता है।
ईरान में इस्लामी क्रांति की सफलता के पूर्व कोई एक भी वैज्ञानिक ऐसा नहीं था जिसे विश्व स्तर पर मान्यता हासिल हो, लेकिन सन 2016 में वेब ऑफ साइंस के अनुसार ईरान में 208 वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, जो दुनिया के 1% वैज्ञानिकों में शामिल हैं। यह अध्ययन दुनिया के विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों के शोध कार्यों के मद्देनजर किया जाता है। ये ऐसी दशा है जब ईरान में धार्मिक केंद्रों के शिक्षक और बुद्धिजीवियों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। पिछले वर्षों के दौरान स्टेम सेल्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी, परमाणु और इंजीनियरिंग जैसे विभिन्न विषयों में इन बुद्धिजीवियों ने जो उपलब्धियां प्राप्त की है, उनसे साबित होता है कि ईरान में इस्लामी क्रांति के बाद की पीढ़ी कितनी योग्यता रखती है।
पिछले वर्षों के दौरान क्रांति के दुश्मनों, विशेषकर अमेरिका की यही कोशिश रही है कि वो ईरान के विकास की राह में बाधाएं उत्पन्न करे। इसके लिए उन्होंने ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों का हथकंडा अपनाया ताकि ईरान को हर तरह से अलग थलग कर दे। देश के युवा वैज्ञानिकों के लिए प्रतिबंधों के दौरान अनजानी राहों पर चलना बेहद कठिन काम था, लेकिन इसका एक परिणाम ये निकला कि नई पीढ़ी की योग्यताएं उभर कर सामने आईं। जैसा कि अगर युद्ध ना होता तो बाकेरी, काजिमी और सुलेमानी जैसे असाधारण कमांडरों को भी कोई नहीं जानता।
वर्चस्ववादी व्यवस्था की हमेशा से यही कोशिश रही है कि ये अपार पूंजी अन्य राष्ट्रों के हाथों से छीन ले, ताकि एक तो ये कि स्वयं उससे लाभ उठाएं और दूसरा यह कि इस तरह से बौद्धिक संपत्ति पर भी अपना एकाधिकार जमाए रखें। राष्ट्रीय नायकों और वैज्ञानिकों की हत्या अन्य राष्ट्रों को उनकी बौद्धिक संपत्ति से वंचित करने का साम्राज्यवादी व्यवस्था का एक तरीका है। इसीलिए आज ईरान के वैज्ञानिकों और कमांडरों की हत्या की जा रही है।
ईरान के कर्मवीर जनरल कासिम सुलेमानी की बगदाद में हत्या और ईरान के भीतर परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की हत्या वास्तव में ईरान की इस्लामिक क्रांति को उसके उच्च उद्देश्यों तक पहुंचने से रोकने की कोशिश है। ईरान में इस्लामिक क्रांति के आरंभिक काल में दुश्मन ने शहीद मुताहरी, शहीद मुफत्ते, शहीद बहिश्ती, शहीद रजाई और शहीद बाहुनर जैसी बड़ी बड़ी हस्तियों की हत्या की थी। दुश्मन इस तरह से ईरान के विकास को रोकना चाहते थे और आज भी वो यही काम कर रहे हैं।
ईरान के इस्लामिक क्रांति के खिलाफ सभी षड्यंत्रों के बावजूद इस समय इस्लामी गणतंत्र ईरान विकास के रास्ते पर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। ईरानी वैज्ञानिक और शोधकर्ता आधुनिक देशों पर निर्भरता के बिना ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में डंका बजा रहे हैं और हर क्षेत्र में उन्होंने असाधारण और ध्यान योग्य सफलताएं अर्जित की है।
आज देश के वैज्ञानिक इस्लामिक क्रांति की राह में अपना खून बहाने वाले शहीदों की राह पर चलकर उनकी खाली जगहों को भर रहे हैं। ईरान के विकास के लिए जान देने वाले इस तरह के वैज्ञानिकों में हालिया नाम शहीद मोहसिन फखरीजादे का जुड़ गया है, जिन्हें बेहद कायरता के साथ मार दिया गया। वो कोरोना वैक्सीन पर काम कर रहे थे, लेकिन उनके शिष्य और सहयोगी इस अभियान को सफलता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, इजाजत दें।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताजा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम।
पत्र संसार। दोस्तों, कार्यक्रम पत्र संसार में आपका स्वागत है। अपने दीदी मरियम मेहर दादी और भैया अमर अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए। दोस्तों, हमें आशा है कि आप जहां कहीं भी होंगे सकुशल होंगे और अपना मनपसंद कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार होंगे।
ठीक उसी तरह से जैसे हम लोग आपका पत्र पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और दीदी पूरी तैयारी के साथ आई क्यों?
जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
तो शुरुआत
तो आनंद मोहन बैन के ईमेल से
बहुत पुराने श्रोता
हैं। आपकी तो बहुत तारीफ करते हैं वो।
अरे हमारे बहुत पुराने
अभी पिछले हफ्ते में जो उनका पत्र हमने शामिल किया था तो उसमें उन्होंने आपके कार्य यानी आपकी जो बातचीत होती है उसकी बहुत तारीफ की थी।
बहुत हम आभारी हैं, हमारी तरफ से उनका शुक्रिया अदा कर दिया जाए। उसे सुन रहे होंगे
जी। तो हाँ, कहते हैं कि कुरान तिलावत से कार्यक्रम शुरू किया गया, इसका हिंदी अनुवाद मुझे बहुत अच्छा लगा। राजनीतिक चर्चा के माध्यम से हमें घटना की विस्तृत जानकारी मिलती है, ईरान इराक युद्ध पर काफी अच्छा विचार सुनने को मिला। किसी भी धर्म के महान व्यक्ति पर कार्टून बनाना एक सोची समझी साजिश लगती है। ऐसे लोगों को धर्म से कोई मतलब नहीं है, इनकी घोर निंदा होनी चाहिए।
जी बहुत बहुत धन्यवाद आनंद मोहन बहन जी। हम को याद है कि रेडियो हिंदी की स्थापना से भी पहले हम जो है आपका नाम हमको ऐसा याद आ रहा है कि सुनते थे, शायद आप उर्दू जो सर्विस थी यहाँ की जो है अभी भी, यानी उसमें आपके हम पत्र सुनते आए हैं, लेकिन हिंदी सेवा में तो आप बिल्कुल हिंदी सेवा के साथ ही।
जी वैसे भैया ये सभी रेडियो सुनते हैं यहाँ से, जितने भी प्रसारित किए जाते हैं जैसे बंगाली भी है।
बिल्कुल, तो जी हम तो ये दोनों में चूंकि रह चुके हैं तो इसलिए इन्हीं दोनों के बारे में जानते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमेशा इसी तरह से हमारा साथ देते रहें, हम आपके आभारी हैं। जी
जी, शांति कुमारी का ये ईमेल है, लिखती है, मैं आपको नए साल 2021 की बधाई देती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ नया साल पूरी दुनिया के लिए शांति का वर्ष हो। मुझे आपके सभी रेडियो कार्यक्रम पसंद है, कार्यक्रम सुनकर मेरा दिल खुश हो जाता है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका शांति
जी। आगे भी लिखते हैं कि मेरा आपसे अनुरोध है कि आपको अपने श्रोताओं के लिए एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए, क्योंकि आजकल सभी रेडियो स्टेशनों में अपने दोस्तों के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता होती है, और मुझे उम्मीद है कि आप इस वर्ष अपने दोस्तों के लिए अच्छी खबर लाएंगे। मैं आपको इस पत्र को रेडियो कार्यक्रम में शामिल करने का अनुरोध करना चाहती हूँ।
देखिए शामिल तो हमने कर लिया, और अनुरोध का आपका आदेश है, और हम तो बड़े जो कैसे कहते हैं ना पलकें बिछाए इंतजार करते रहते हैं अपने श्रोताओं के ईमेल्स और उनके पत्रों का। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप लोग के इस प्रकार के पत्र से बड़ी शांति मिलती है। और अच्छी खबर तो हम कोशिश करते हैं, लेकिन अब खबर में तो जो होती है वही देते हैं, और हमें भी हमारी भी दुआ है कि ये साल पिछले साल की तरह ना हो, और जिस तरह से ये सन 2020 गया है उसी तरह से वो सारी चीज़ें भी चली जाएं जो ये साल हमारे लिए लाया था, यानी जो मुसीबतें और जिस प्रकार की समस्याएं। तो हमारी भी प्रार्थना और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी तो अब मेरे ख्याल से ये समय है एक सांस्कृतिक खबर का। जी क्यों,
बिल्कुल सही कहा आपने।
जी तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ सभी श्रोताओं के साथ।
जी जी, काजर शासन काल के दौरान ईरान के प्रधानमंत्री हसन वसुक उद्दौले के निजी घर को एक सार्वजनिक पार्क में बदल दिया गया है। लगभग 2 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थित 150 साल पुराने बगीचे को अनार के पेड़ों के कारण अनार का बगीचा कहा जाता था। हवेली के दीवारों और छत पर दर्पण का काम, फूल और पक्षी के चित्र और अलंकृत मेहराब अद्वितीय हैं। कमरों की खिड़कियां नाजुक लकड़ी की सजावट और रंगीन कांच से सुशोभित है। पहले यह बगीचा एक सरकारी संस्थान का था, लेकिन तेहरान के उस जिले में हरित स्थान की कमी थी, तो तेहरान नगर पालिका ने उस पर अपना अधिकार जमा लिया। यहाँ पर ध्यान योग्य बात यह है कि बगीचे के पुराने ढांचे और पेड़ों को संरक्षित किया गया है, साथ ही इस ऐतिहासिक संरचना को सार्वजनिक पार्क में बदलते समय ईरानी इस्लामी शैली का भी ध्यान रखा गया है। बगीचे का नवीनीकरण होने के बाद इसे सार्वजनिक उद्यान के रूप में लोगों के लिए खोला गया है।
बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे ईरान की खास बात है, बाग में ईरान काफ़ी आगे रहा है, और बहुत पहले से एक से खूबसूरत बाग और बगीचे यहाँ ईरान में मौजूद हैं, जो विभिन्न कार्यक्रमों में हम लोग ने बताया भी है, जिस सपनों के देश ईरान आदि में हम बागों के बारे में बताते भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी तो अब खबर तो हो गई, और मेरे ख्याल से अब खबरों पर कमेंट्स की बारी है ना।
जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वैसे आप जब होते हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि
मुझे भी बहुत अच्छा लगता है।
इराक में आतंकवादी हमले करवा करके अमेरिका अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है, इस पर जमाल कहते हैं सभी आतंकवाद की जननी अमेरिका है, ये इराक में सत्ता जमाने और देश में असुरक्षा का लाभ उठाने वाले आक्रमणकारी हैं।
बिल्कुल सही बात है, ये तो पूरी दुनिया ही जानती है। देखें जब निकलने की बात होने लगी, जहां इराकी पार्लियामेंट ने ये कानून पास कर दिया है, एक साल हो चुका है कि जो विदेशी सैनिकों को और अमरीकी सैनिकों को देश से निकलना चाहिए, तो उसके बाद से वहाँ पर हंगामे शुरू हो गए, वहाँ पर धमाके होने लगे और सब होने लगा कि ताकि ये साबित किया जाए कि नहीं साहब अमरीकी फौजियों की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, वैसे अब तो सब समझते ही हैं। जी
जी, सऊदी अरब ने ईरान की ओर बढ़ाया हाथ, तेहरान ने दिया जवाब। इस पर शेख अरशद लिखते हैं, ईरान को सिर्फ सऊदी अरब के साथ चर्चा करनी चाहिए, ईरान को इस क्रिमिनल शैतान सऊदी अरब परिवार को कहना चाहिए पैक करो और अपने शैतान आकाओं ज़ायनिस्ट और यूएसए के साथ जहन्नुम में जाओ।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए काश ऐसा हो सकता, ये तो हम लोग सबकी इच्छा है, लेकिन असल बात यह है कि जो ये इलाका है उस पर आप अगर देखें तो सऊदी अरब ही वो देश है जिसे इस्तेमाल करके अमेरिका काफ़ी हद तक प्रभाव जमा पाया है, तो जो पश्चिमी एशिया है और जिसे पश्चिमी देश जो है मिडिल ईस्ट कहते हैं, मध्य पूर्व कहते हैं, तो वहाँ पर अमेरिका और जो साम्राज्यवादी शक्तियों की जो नीतियाँ हैं उसे लागू करने में सऊदी अरब का काफ़ी बड़ा हाथ रहा है, और ये बहुत बड़ी चर्चा है। हम लोग इस पर कार्यक्रम भी प्रसारित कर चुके हैं और उस पर चर्चा भी कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
जी, बगदाद धमाकों से सऊदी अरब ने बाइडन सरकार को दिया अहम संदेश, इराकी टीकाकार का सनसनीखेज बयान। इस पर खालिद अंसारी लिखते हैं, दोनों आत्मघाती हमलावरों की पहचान सऊदी वहाबी के रूप में की गई है, ये जिहादी चूहे इराक के अंदर कैसे पहुंचे ये रहस्य है, हालांकि वे जल्द ही पता लगा लेंगे।
देखें अब ये तो बिल्कुल रिपोर्टों में साबित हो चुका है, इसके दस्तावेजात भी हैं कि जब इससे पहले जो सिलसिला था इराक में आत्मघाती आक्रमणकारियों का, तो ये सबूतों के साथ ये बात सबके सामने आई थी कि 5000 आत्मघाती आक्रमणकारी सऊदी अरब से इराक में गए थे। तो जाहिर सी बात है जो 5000 भेज सकता है तो फिर भेज रहा है इसी तरह का, और बॉर्डर भी मिलता है, और उसके अलावा बहुत सारे जो अफसोस की बात यह है कि जो इराक के पड़ोस में कई ऐसे देश हैं जिनके सऊदी अरब और उन ताकतों से निकट संबंध है जो इराक में असुरक्षा अशांति चाहते हैं, तो इसलिए उनकी मदद से बहुत कुछ किया जा सकता है बहरहाल। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब स्वयंसेवी बल जो है वहाँ का हशदुल शाबी और दूसरे जो संगठन है वो सचेत है, और यही वजह है कि अमेरिका काफ़ी कोशिश कर रहा है इराक के जो स्वयंसेवी संगठन है और जो हशदुल शाबी है ख़ास तौर पर उसे दबाव में लाने के लिए कोशिश हो रही है, उसके कमांडरों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, उसे आतंकवादियों की लिस्ट में लाए जा रहे हैं। बड़े अजीब बात है कि दाइश और के खिलाफ जिसने जीत दर्ज की है, जिसने देश को बचाया जिस संगठन ने, उसे अब जो है अमेरिका आतंकवादी कह रहा है। जी जी, तो अब जाहिर सी बात है हम लोग की बातचीत बहुत हो चुकी है, और अब जरा सा कानों में रस खोले हम अपने श्रोताओं की आवाज़ सुनकर और हम श्रोता बन जाएं। तो आपने बातचीत की होगी, किससे बातचीत की आपने?
जी, ये है पाकिस्तान से मोहम्मद कुरैशी।
जी, तो मोहम्मद कुरैशी साहब की आवाज़ सुनेंगे हम अपने श्रोताओं को, बता दें उनको पता ही होगा कि मोहम्मद तो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, और कुरैश उस कबीले का नाम था जहाँ वो पैदा हुए थे और जहाँ के थे, जिस कबीले के थे, तो इसलिए उनके सम्मान में बहुत सारे जो है वो कुरैशी अपने आप को लिखते हैं, कि जिनका जिससे ये पता चलता है कि इन लोगों का संबंध कुरैश यानी अरब के उसी कबीले से है। तो हम सुनते हैं मोहम्मद कुरैशी साहब की मीठी आवाज़।
अस्सलामु अलैकुम, मैं मोहम्मद अरशद कुरैशी इंटरनेशनल रेडियो लिसनर्स ऑर्गेनाइजेशन कराची पाकिस्तान से मुखातिब हूं, और हमेशा की तरह इस बार भी रेडियो तहरान की सर्विस की तवस्सत से अपने तमाम मेंबरान, दोस्त, अहबाब, اور ریڈیو سے محبت کرنے والے، ریڈیو کو چاہنے والے ریڈیو کی نشر گاہوں میں بیٹھ کر ہمارے لیے پروگرام تیار کر کے ہوا کے دوش پہ ہماری سماعتوں تک پہنچانے والے تمام میزبانوں کو نئے سال کی بہت بہت مبارکباد قبول ہو۔ گو کہ یہ جو برس ہے اس میں ہمیں بہت کٹھن حالات کا سامنا رہا، بہت کورونا کووڈ 19 کی وجہ سے جانی اور مالی نقصان ہوا، پورا عالم اس وبا کی لپیٹ میں رہا، کہیں پہلی لہر میں بہت زیادہ دنیا میں نقصانات ہوئے، پھر دوسری، کہیں تیسری لہر، خود ہمارے پاکستان میں میرے شہر میں دوسری لہر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال نئے سال جو آ رہا ہے 2021 میں، اس میں اس دنیا، پوری دنیا کو اس وبا سے نجات دلا دے، محفوظ کر دے، پورے عالم میں رہنے والے انسانوں کے جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ اور 2021 جو نیا برس آ رہا ہے، اس برس اللہ تعالیٰ گزشتہ برسوں کی طرح بلکہ اس سے بھی بہت اچھے انداز میں دنیا کا پہیہ دوبارہ رواں دواں کر دے، تمام کام، تمام روزمرہ کے امور اسی طرح لوگ انجام دینے لگیں بلا خوف، جس طرح ماضی میں دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ 2021 کو پورے عالم بالخصوص اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ بہت بہتر سال بنائے، اور اسلام کے لیے اور اسلامی ممالک کے آپس میں ہم آہنگی کے لیے یہ ایک مثالی سال ہو۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، فی امان اللہ۔
بہت بہت دھنواد، اور ہم اپنے سبھی شروتاؤں سے کہیں گے کہ اگر وہ اپنی اچھی میٹھی سی آواز کے ساتھ ہمارے کانوں میں رس گھولنا چاہتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہمارے شروتاؤں کو بھی آنندت کرنا چاہتے ہیں تو اپنی آواز ہمیں بھیج سکتے ہیں، اپنے وچار ہمیں بھیج سکتے ہیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ بہت بہت دھنواد۔ اسی کے ساتھ اگلی بھیٹ اور اگلے پتر سنسار تک کے لیے قمر عباس اور مریم مہردادی کو انومتی دیں۔ خدا حافظ۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ شروتاؤ، آپ ہمارا پتہ نوٹ کر سکتے ہیں، ہمارا ای میل آئی ڈی ہے hindi@ws.irib.ir۔ ویب سائٹ ہماری ہے parstoday.com/hi۔ آپ اپنے وچاروں کو ای میل کے مادھیم سے ہمیں اوشیہ بھیجیے، ہمیں آپ کی پرتکریاؤں کی ہمیشہ پرتیکشا رہتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہماری یہ سبھا یہیں پر سمپن ہوتی ہے۔ آپ سبھی سے اب ہم انومتی چاہتے ہیں۔ شبھ راتری، خدا حافظ۔